अध्याय 10 हिंदी भाषा आर्य भाषा परिवार। पहले कुछ विद्वान भारत और यूरोप की समस्त भाषाओं के परिवार को आर्य भाषा परिवार कहकर पुकारा करते थे। मैक्स मूलर, जेस्परसन आदि कुछ विद्वानों ने भारूपीय परिवार का नाम आर्य परिवार दिया था, क्योंकि इन लोगों का विचार था कि इन सभी भाषाओं के बोलने वाले आर्य थे, जो आरंभ में किसी एक ही स्थान पर रहते थे और एक विशेष नस्ल के थे। बाद में विद्वानों ने खोज करके इस धारणा को सर्वथा मिथ्या सिद्ध कर दिया और यह बताया कि आर्य शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं भाषाओं के लिए हो सकता है जो भारत और ईरान में ही मुख्य रूप से प्रचलित हैं, क्योंकि आर्याणाम से ईरान और ईरान शब्द का भी विकास हुआ है और भारतीय तथा ईरानी भाषाओं में प्राचीन काल के अंतर्गत अत्यधिक साम्य भी रहा है। इसी कारण आज भारत ईरानी या हिंद ईरानी शाखा को ही आर्य भाषा परिवार का नायुक्त संगत प्रतीत होता है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि भारत और ईरान के अंतर्गत ही इस परिवार की भाषाओं के अत्यधिक प्राचीन रूप मिलते हैं। भारत के अंतर्गत ऋग्वेद में तो संसार का प्राचीनतम साहित्य मिलता है, जिसके अंतर्गत आर्य भाषा अपने प्राचीनतम रूप में आज भी सुरक्षित है। ऋग्वेद की रचना तो अत्यंत प्राचीन काल में मानी जाती है, किंतु अधिकांश विद्वान आज 2400 ईस्वी पूर्व की रचना मानने में तो कोई संकोच नहीं करते। इस दृष्टि से भी ऋग्वेद की भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसे ही पारसियों का धर्म ग्रंथ जिंद अवस्था भी लगभग 7वीं सदी ईस्वी पूर्व का माना जाता है। ये दोनों भाषाओं में जो परस्पर साम्य दृष्टिगोचर होता है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस आर्य भाषा के मूल भाषी जब अपने दल के साथ आगे बढ़े, तब उनमें से कुछ लोग तो ईरान ही रह गए और कुछ भारत में आकर बस गए। इन्हीं आधारों पर आर्य भाषा परिवार की तीन प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं, ईरानी शाखा, दरद शाखा और भारतीय शाखा। क, ईरानी शाखा। इस शाखा के प्राचीनतम भाषाओं को भाषा का तो आज कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सिकंदर ने 323 ईस्वी पूर्व और अरब विजेताओं ने 651 ईस्वी में ईरानी भाषा का संपूर्ण प्राचीन साहित्य जलाकर खाक कर दिया था। वहाँ केवल फारसी ग्रंथ अवस्थाएँ मिलता है, जिसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा के बहुत निकट है। ईरानी भाषा के अंतर्गत अवस्ती, बर्गिस्ता, पश्तो, दिवारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी, पहलवी तथा आधुनिक फारसी भाषाएं आती हैं। इनमें से अवस्ती और फारसी की दो प्रमुख भाषाएं हैं। इन दोनों में से अवस्ती सर्वाधिक प्राचीन है। यह भाषा बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियन भी कहलाती है। कुछ लोग भ्रम से इसे जिंद भी कहते हैं, परंतु इसका अवस्ती नाम इसमें निम्नलिखित प्राचीनतम ग्रंथ अवस्था के कारण पड़ा है। वैसे भी अवस्था का अर्थ है शास्त्र। फारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त और उनके उपास्य देव अहुरमज़द माने जाते हैं, और अवस्था में अहुरमज़द की प्रार्थना, यज्ञ, बलि, देवभूमि, राक्षस लोग आदि संबंधित गाथाएं संकलित हैं। अवस्था की टीका को जिंद कहते हैं। जिंद का अर्थ ही टीका होता है। आजकल इन दोनों शब्दों को मिलाकर फारसी धर्म ग्रंथ और इस ग्रंथ की भाषा को जिंदावस्था या जिंदावस्था कहा जाता है। इस भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द थोड़े ही रूपांतर से मिल जाते हैं, जैसे संस्कृत के सोम अवस्थी में होम, संस्कृत में तरुण अवस्थी में तौरुणम, संस्कृत देव अवस्थी में दैव, संस्कृत में अहम अवस्थी में अजेम, संस्कृत में यदि अवस्थी में येज, संस्कृत में क्षिति अवस्थी में क्षितिश, संस्कृत में ददाति अवस्थी में ददेन्ति, संस्कृत में चत्वार अवस्थी में चत्वारो, संस्कृत में अष्ट अवस्थी में अष्ट, संस्कृत में मातर अवस्थी में मातर, संस्कृत में पितर अवस्थी में पितर। ईरानी शाखा की दूसरी प्रमुख भाषा फारसी है। प्राचीन फारसी में हकमानी वंश के बादशाहों की 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के शिलालेख मिलते हैं। भाषा की दृष्टि से फारसी के दो रूप मिलते हैं, हुज्जारेश जिसमें अरबी शब्दों की अधिकता है, और दूसरा पाजंद या फारसी जिसमें पारसी शब्द कम मिलते हैं। आधुनिक फारसी का विकास ईसा की 9वीं शताब्दी में हुआ। फिरदौसी का सुप्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा इसी काल की आरंभिक कृति है। इस समय फारसी का गठन बिल्कुल बदल गया है। यह आधुनिक फारसी हिंदी की तरह वियोगात्मक हो गई है। लोग यह मध्यकालीन फारसी की अपेक्षा अधिक सरल और मधुर है। इधर फारसी में भी राष्ट्रीयता की लहर आ रही है और तुर्की की भांति लोग अरबी शब्दों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे फारसी भी संस्कृत से बहुत निकट है, जैसे संस्कृत में सप्त, फारसी में हफ्त, संस्कृत में सिंध, फारसी में हिंदू, संस्कृत में सर्व, फारसी में हौर्व, संस्कृत में यदि, फारसी में यदि, संस्कृत में हम, फारसी में आदम, संस्कृत में अस्मि, फारसी में अस्त, संस्कृत में संति, फारसी में अंध, संस्कृत में ददाति, फारसी में दादह अंध, संस्कृत में चत्वारा, फारसी में चहार, संस्कृत में दश, फारसी में दह, संस्कृत में शतम, फारसी में सद, संस्कृत में मातर, संस्कृत में फारसी में मादर, संस्कृत में पितर, फारसी में पीदर। ख दरस शाखा, दरस शाखा का अर्थ पर्वत होता है। दरस शब्द का अर्थ पर्वत होता है। अतः पंजाब के पश्चिमोत्तर और पामीर के दक्षिण पूर्व में जो पर्वतीय प्रदेश है वह दरस भाषाओं का क्षेत्र माना जाता है। भारतीय विद्वान इसे पिशाच प्रदेश कहते हैं और यहाँ की भाषा को पैशाची या भूत भाषा मानते हैं। पहले इस भाषा के बोलने वाले कभी भारत के भागों में ही रहते थे, तभी तो मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि भाषाएं इसे प्रभावित जान पड़ती हैं। ग्रहण की दृष्टि से दरस भाषाएं ईरानी और भारतीय भाषा के मध्यवर्ती हैं। पहले तो इनको पैशाचिक अगर भारतीय भाषाएं ही माना जाता था, परंतु अब इनकी अलग से तीन वर्ग स्वीकार किए जाते हैं। पश्चिमी वर्ग, इसमें काफिर भाषा आती है, इस भाषा में साहित्य नहीं मिलता। दूसरा केंद्रीय वर्ग, इसमें खोवारी भाषा आती है जिसका रूप एक चित्राली बोली है जो कि अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। तीसरा उत्तर पूर्वी वर्ग, इसमें शीना, कश्मीरी और कोहिनाफ सी भाषाएं आती हैं। इनमें से शीना प्राचीन दरद की उत्तराधिकारिणी है। कश्मीरी भाषा सारे कश्मीर प्रदेश में प्रचलित है। पहले प्रोफेसर गुणे आदि विद्वान कश्मीरी को भारतीय वर्ग में ही मानते थे और पैशाची अभ्रंश से इसका विकास स्वीकार करते थे। वैसे भी इस भाषा पर संस्कृत का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और इसी कारण ऐसा माना जा रहा है, परंतु अब ऐसा नहीं माना जाता। आजकल इसे दरस शाखा के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इस शाखा की अंतिम भाषा कोहिस्तानी है जो वास्तव में अनेक छोटी छोटी बोलियों के समूह का एक कल्पित नाम है। आजकल इन बोलियों पर पश्तो का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इनमें से मैया, तोरबारी आदि कोहिस्तानी भाषा की प्रमुख बोलियाँ हैं। ग भारतीय भाषा, यह भारतीय शाखा केवल आर्य भाषा परिवार की नहीं, संपूर्ण भारतीय परिवार की सर्वोत्कृष्ट शाखा है। इसी शाखा के अंतर्गत सर्वाधिक गौरवशालिनी, सुदीर्घ परंपरा युक्त, विशाल एवं समृद्धशालिनी वे आर्य भाषाएं आती हैं जो धर्म, संस्कृति, समाज और साहित्य की दृष्टि से संपूर्ण विश्व की भाषाओं में श्रेष्ठ मानी जाती हैं और जिनका विपुल वांग्मय संसार में सर्वाधिक प्राचीन, समृद्ध एवं उत्कृष्ट है। इसी शाखा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि हिंदी भाषाएं आती हैं जिनका विश्व भर की भाषाओं में विशिष्ट स्थान है। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास, भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत प्राचीन काल में ही हो गई थी, किंतु अधिकांश विद्वान आज भी यही मानते हैं कि लगभग 2400 ईस्वी पूर्व आर्य भारत में अवश्य रहते थे और उन्होंने साहित्य रचना भी आरंभ कर दी थी, क्योंकि संसार के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा का विकास ईस्वी से 2400 ईस्वी पूर्व अवश्य हो गया था। इसी आधार पर यदि भारतीय आर्य भाषा के इतिहास का काल विभाजन किया जाए तो उसे तीन कालों में इस प्रकार विभाजित किया कर सकते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 2400 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इस काल के अंतर्गत भारतीय आर्य भाषा के दो रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से अभिप्राय उस भारतीय आर्य भाषा से जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है, जैसे वैदिकी छांदस या प्राचीन संस्कृत कहकर ही पुकारा जाता है। ऋक, यजुसाम और अथर्व नामक चारों वेद, संपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, संपूर्ण आर्य ग्रंथ और समस्त उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। विद्वानों का विचार है कि ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडलों की भाषा अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि अन्य सभी मंडलों की भाषा अत्यधिक प्राचीन है और वह अवेस्ता के अधिक निकट है। विद्वान यह मानते हैं कि ऋग्वेद के दशम मंडल की रचना उस समय हुई थी जब आर्य कुरु पांचाल प्रदेश की ओर बढ़ गए थे और उन पर मध्य देश के अनार्यों का प्रभाव पड़ने लगा था। मध्य देश के अनार्यों से प्रभावित भाषा ही सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में मिलती है। इनके अतिरिक्त शेष ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति का प्राचीन रूप उस समय का है जिस समय आर्य लोग पंजाब के आसपास ही रहते थे। इस वैदिक संस्कृति का तीसरा रूप वह है जो आर्य लोग मध्य देश के भी आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्व में जा बसे थे और उनकी भाषा पर पूर्वी व्रात्यों की भाषा का प्रभाव पड़ने लगा था। इस प्रकार जैसे जैसे आर्य उत्तर से मध्य और पूर्व की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी वैदिक भाषा पर मध्य देशीय एवं पूर्वीय भाषाओं का प्रभाव पड़ने लगा और आर्य भी अपनी भाषा को अधिक सुगम एवं सुबोध बनाने के लिए उनकी ध्वनियों को अपनाने लगे, जिससे वैदिक भाषा में परिवर्तन होते चले गए। वैदिक भाषा में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह स्वर प्रधान थी। उसकी रूप संरचना में जटिलता एवं विविधता थी, जिसमें तीन लिंग और तीन वचन होते थे। वह श्रेष्ठ योगात्मक थी और उसमें उपसर्गों का प्रयोग मूल शब्द से हटकर भी होता था, जैसे परिद्यावा पृथ्वी यंति सत्य। यहाँ पर परि उपसर्ग यंति से बहुत पहले ही आ गया है। इसी वैदिक भाषा में से लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। पाणिनि के समय तक वैदिक भाषा के ही साहित्य की भाषा थी, परंतु जैसा ब्राह्मणों और परिषदों की भाषा से पता चलता है कि वह वैदिक भाषा तो देवभाषा हो गई और कुरु पांचाल के जनभाषा साहित्यिक स्तर की ओर अग्रसर हो गई थी। पहले इसका रूप अस्थिर एवं अव्यवस्थित था और इसमें अनेक जनपदीय प्रयोग प्रचलित थे, परंतु पाणिनि ने इसे स्थिर एवं व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। इसके विविध रूपों में एक रूपता एवं समता लाने के लिए इसे संस्कृत बनाया। यही कारण है कि पाणिनि ने वैदिक भाषा को देववाणी और संस्कृत को भाषा कहा है। यह भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित होकर ही लौकिक संस्कृत कहलाई और इसमें धार्मिक दार्शनिक लौकिक एवं ललित साहित्य की रचना हुई। वैदिक भाषा में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि के अनेक रूप प्रचलित थे, किंतु लौकिक संस्कृत में उनकी व्यवस्था की गई और अनेक विकल्पों के स्थान पर एक से रूप बनाने का आग्रह किया गया। साथ ही ऐसे नियम बनाए गए जिनके द्वारा रूपों में व्याप्त बहुलता एवं विविधता नष्ट हो गई और सभी रूपों में व्याकरणगत एक रूपता स्थापित हो गई। अब सर्वनाम एवं संज्ञा के रूप स्थिर हो गए, उपसर्ग क्रिया के साथ लगने लगे और तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग हो प्रत्ययों का विकास हो गया। शब्द निर्माण की इतनी अधिक सामर्थ्य होने के कारण ही लौकिक संस्कृत अत्यधिक समृद्ध एवं उन्नत भाषा हो गई। दूसरा, मध्यकालीन आर्य भाषा काल। पाणिनि द्वारा छांदस भाषा का संस्कार हो जाने पर अथवा छांदस भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों में बच जाने पर लौकिक संस्कृत माता साहित्यिक भाषा संस्कृत भाषा का तो अभ्युदय हो गया, परंतु लोक भाषाएं बाद गति से प्रचलित रहे और उमड़कर सामने आने लगी। इन्हीं लोक भाषाओं को विद्वानों ने प्राकृत नाम दिया। संपूर्ण मध्यकाल में इन प्राकृतों का अत्यधिक जोर रहा। इनके विकास काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। क, प्रथम प्राकृत काल। यह काल 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक माना जाता है। इस काल की प्रमुख भाषा पाली है। यह पाली भाषा मूलतः कहाँ प्रचलित थी, इस प्रश्न पर किसी विद्वान एक पत नहीं, परंतु आज इतना सभी मानते हैं कि बुद्ध भगवान ने मागधी भाषा में अपने उपदेश दिए थे और कुछ काल उपरांत उन्हीं उपदेशों को जिस लोक प्रचलित उन राष्ट्रीय भाषा में अंकित करके प्रचारित किया गया, वही भाषा पाली के नाम से प्रसिद्ध है। आज संपूर्ण पाली साहित्य भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म संबंधी संपूर्ण प्राचीन काव्य गाथाएं आदि पाली भाषा में ही मिलती हैं। आगे चलकर संस्कृत भाषा में भी बौद्ध साहित्य का निर्माण हुआ है, परंतु अधिकांश प्राचीन बौद्ध साहित्य की भाषा पाली ही है। कुछ विद्वान मागधी और पाली भाषा को एक ही मानते हैं, परंतु आधुनिक विद्वान इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि मागधी भाषा का क्षेत्र सीमित था और वह प्राचीन मगध प्रदेश में बोली जाती थी, जबकि पाली का क्षेत्र व्यापक था और वह अंतरप्रांतीय भाषा हो गई थी। इतना अवश्य है कि पाली भाषा पर अन्य बोलियों का भी प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त यह धारणा भी निर्मूल थी कि पाली आदि प्राकृत भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, क्योंकि संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यही ज्ञात होता है कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास संस्कृत से न होकर स्वतंत्र रूप से हुआ है। अतएव पाली भाषा भी संस्कृत विकसित होकर एक ऐसी मिश्रित भाषा मानी जा सकती है जिसमें मध्य देश की बोलियों की प्रवृत्तियों का प्राधान्य है और कुछ अंश एवं प्रादेशिक बोलियों के भी। इस भाषा में बुद्ध भगवान के वचनों का संग्रह त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक कहलाते हैं। इसके अनंतर इन पिटकों पर लिखी हुई टीकाएं मिलती हैं, जो अनुपिटक कहलाती हैं। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, तुरीय निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, गुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इनमें से खुद्दक निकाय का धम्म पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। विनय पिटक में 3 ग्रंथ सम्मिलित हैं, सुत्त विभंग, खंधक और परिवार का पाठ। इसी तरह अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, धम्म संगणी, विभंग, कथा वत्थु, पुग्गल पंचति, धातु कहा, यमक और पठानपकरण। ये सभी ग्रंथ दार्शनिक विचारों के परिपूर्ण हैं। जातक कथाएं भी पाली भाषा के महत्वपूर्ण देन हैं। अनुपिटक का अधिकांश भाग सिंगली विद्वानों द्वारा रचा गया है। इन ग्रंथों में भी संवाद या कथा के रूप में दार्शनिक विभिजन किया गया है। इनके अतिरिक्त पाली भाषा में छंद शास्त्र, व्याकरण तथा कुश ग्रंथ भी मिलते हैं। इस प्रकार पाली साहित्य का रचना काल 841 ईसा पूर्व से आधुनिक युग तक लगभग 2500 वर्षों से फैला हुआ है और इसने एशिया के 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को कई दृष्टियों में प्रभावित किया है। इसी युग में अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भाषाएं भी आती हैं। इन प्राकृत भाषाओं के कई रूप मिलते हैं। कुछ विद्वान इन लेखों की भाषा को दो बोलियों में विभाजित करते हैं, कुछ तीन बोलियों में, कुछ चार बोलियों में और कुछ पाँच में। इन विभाजनों का कारण प्रादेशिक रूपांतर है। वैसे इन शिलालेखों की भाषा पाली से अधिक निकट है, किंतु इन लेखों पर स्थानीय प्रभाव की अधिक पड़ा है। इसका कारण यह है कि अशोक ने स्थानीय लोगों के लिए उनकी बोली में ये उपदेश या शिक्षाएँ लिखवाई थी। इसी कारण इन लेखों की भाषा के पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर पश्चिमी रूप, दक्षिण पश्चिमी रूप, पूर्वी रूप, मध्यदेशीय रूप और दक्षिणी रूप। इन भाषाओं के अधिकांश ध्वनियाँ पाली भाषा का ही समान है, परंतु पाली से अधिक विकसित ध्वनियों का प्रयोग इन लेखों में मिलता है। जैसे पाली में केवल एक स का ही प्रयोग हुआ है, जबकि इन लेखों में स, श, श तीनों का प्रयोग मिलता है। ऐसे ही पाली की अपेक्षा इनमें आत्मनेय पद के प्रयोग विरल ही मिलते हैं, किंतु यहाँ प्रतिपादकों की संख्या कुछ बड़ी है और वे अधिकांश स्वरांत हैं। इस प्रकार शिलालेखों की प्राकृतों का अध्ययन करने पर यही ज्ञात होता है कि उनमें पाली से अधिक विकास हुआ है और उनमें वे सभी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जिनका विकास आगामी प्राकृत भाषाओं में हुआ है। ख, तृतीय प्राकृत काल। यह काल ईस्वी सन के आरंभ से लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में जनसाधारण की उन भाषाओं का अत्यधिक विकास हुआ जो पहले केवल बोलचाल में प्रचलित थी और जिनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए नहीं होता था। पाली भाषा के उपरांत इन प्राकृत भाषाओं का स्थान स्थान पर विकास हुआ। प्राकृत के इन सभी रूपों को सर्वप्रथम चार भागों में विभाजित किया जाता है। अश्वघोष के नाटकों के प्राकृत, धम्मपद के प्राकृत, निय प्राकृत और भारतीय प्राकृत। इनमें से प्राकृतों के प्रथम तीन रूप भारत के बाहर मिले हैं। अश्वघोष के नाटक कुछ प्रतियां मध्य एशिया में मिली हैं। उनमें जो प्राकृतें मिली हैं वे संस्कृत से प्रभावित हैं और वे अशोक के शिलालेखों से भी बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। दूसरे, धम्मपद की एक प्रति खेतान में खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखी हुई मिली है। इसकी प्राकृत भाषा भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश की तत्कालीन प्राकृत से मिलती है। तीसरे, नियम प्राकृत का संबंध चीनी तुर्किस्तान के निय प्रदेश से है। वहाँ पर खरोष्ठी लिपि में लिखित कई लेख मिले हैं जो निय प्राकृत में है और वह भी भारत के पश्चिमी प्रदेश की प्राकृत है जो ईरानी, अफगानिस्तानी और तोखारी से प्रभावित है। चौथी, भारतीय प्राकृतों के अंतर्गत जो प्राकृत भाषाएँ आती हैं उनमें से महाराष्ट्र, पैशाची, मागधी, शौरसेनी, अर्धमागधी आदि प्रसिद्ध हैं। प्राकृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण वररुचि ने अपने प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरण में केवल चार प्रकार बताए प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया है। पहला महाराष्ट्री, दूसरा पैशाची, तीसरा मागधी, चौथा शौरसेनी। हेमचंद ने अपने हेम शब्दानुशासन में कुल उक्त चार प्राकृत भाषाओं के अतिरिक्त तीन और नवीन प्राकृतों का उल्लेख किया है। पहला चुलका पैशाची, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा अभ्रंश। इस प्रकार सात प्राकृत भाषाएँ उस समय प्रचलित थी। इनके अतिरिक्त अन्य स्रोतों से कुछ और प्राकृत भाषाओं के नाम मिलते हैं जो भारत में प्रचलित थी, जैसे बालही की, शाकारी, टक्की, शाबरी, चंडाली, आभिर की, अवंती, दक्षिणावत्य, भूत भाषा, गौड़ी आदि। विद्वानों का विचार है कि इनमें से प्रथम पांच प्राकृत तो मागधी के ही उपभेद हैं। अभिरिका प्राकृत शौरसेनी का एक जातीय भेद थी और अवंती प्राकृत उज्जैनी की आसपास प्रचलित शौरसेनी ही थी जो महाराष्ट्र से प्रभावित थी। दक्षिणायत्य विश्वरसेनी प्राकृत का एक भेद थी। भूत भाषा प्राकृत हेमचंद द्वारा प्रतिपादित चुलिका पैशाची प्राकृत थी और गौणी प्राकृत गौण देश में प्रचलित मागधी प्राकृत ही थी। इस प्रकार विभिन्न प्राकृत भाषाओं के नाम और उनको साहित्य का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इस युग की केवल पांच प्राकृत भाषाएँ ऐसी थी जिनके साहित्य एवं व्याकरण की विशेषताओं का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है और जो भारत में उस समय सर्वाधिक प्रचलित थी। पहला शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्रीय, पैशाची। इनमें से शौरसेनी प्राकृत मध्य देश में शूरसेन प्रदेश के अंतर्गत प्रचलित थी। आधुनिक मथुरा प्रदेश ही उस समय शूरसेन प्रदेश कहलाता था। इस भाषा में प्राय वे सभी ध्वनियाँ विद्यमान है जो पाली भाषा में विद्यमान है। यहाँ स्वरों में ए, ओ और री ध्वनियाँ नहीं है और व्यंजन में स, श, श पर केवल स ध्वनि ही मिलती है। साथ ही न और य के स्थान पर कम सौ और ज ध्वनियाँ मिलती हैं। दूसरा, मागधी प्राकृत वर्तमान अवध से लेकर बंगाल तक प्रचलित थी। इसी भाषा को महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन एवं उपदेशों के लिए चुना था। विद्वानों ने इसे छांतश भाषा से विकसित प्राच्य बोली साहित्यिक एवं परिमार्जित रूप स्वीकार किया है। मागधी में भी पाली के सभी स्वर विद्यमान हैं, किंतु व्यंजनों के क्षेत्र में मागधी ने पाली का अनुसरण न करके स्वतंत्र विकास किया है, इसीलिए यहाँ पर स, श, श के स्थान पर केवल श ध्वनि मिलती है। र के स्थान पर ल, ज के स्थान पर य और छ के स्थान पर स्क आदि मिलते हैं। तीसरा, अर्धमागधी प्राकृत शूरसेन प्रदेश के पूर्वी भाग में तथा मगध के पश्चिम में प्रचलित थी। यह अधिकांश कौशल एवं वाराणसी प्रदेश के आसपास भूली जाती थी, इसलिए कुछ विद्वान इसे पुरानी कौशली भी कहते हैं। महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध की मातृभाषा होने के कारण जैनियों एवं बौद्धों में यही शाब्दिक भाषा के रूप में स्वीकार है, परंतु बाद में बौद्धों ने पाली भाषा से संपूर्ण साहित्य का अनुवाद कर लिया और यह प्राकृत केवल जैन धर्म की भाषा रह गई। इस भाषा में मागधी और महाराष्ट्री दोनों प्राकृत भाषा के तत्व विद्यमान हैं। स्वर और व्यंजनों की दृष्टि से अर्थमागधी ने मागधी और शेरशेनी का अनुसरण किया है। अंतर यही है कि यहाँ स, श और श के स्थान पर केवल स ध्वनि को ही अधिक अपनाया गया है। शेष अधिकांश भाषा मागधी के ही समान है। चौथा, महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास महाराष्ट्र प्रदेश में हुआ है। वैसे यह कोई स्वतंत्र प्राकृत न होकर स्वरश्रेणी प्राकृत से विकसित हुई थी और यह स्वरश्रेणी का पार्श्वकालीन रूप थी। अन्य प्राकृत भाषाएं तो नाटकों के अंतर्गत ही मिलती हैं, जबकि महाराष्ट्रीय प्राकृत में रावण बहु तथा गौण बहु जैसे स्वतंत्र महाकाव्यों की रचना मिलती है। इसमें स्वरश्रेणी प्राकृत के समान ही सभी स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ मिलती हैं और यहाँ री के स्थान पर अ ई उ रूप मिलते हैं। पाँचवा, पैशाची प्राकृत पिशाच प्रदेश से प्रचलित थी, परंतु अभी तक विद्वान यह निर्णय नहीं कर पाए हैं कि वह पिशाच प्रदेश कौन सा था। हार्नले ने इसे दक्षिण के द्रविड़ परिवार से प्रयुक्त भाषा कहा है और डॉक्टर रियसन ने इसे कश्मीर में प्रचलित भाषा का प्राचीन रूप बतलाते हैं। राजशेखर ने इसे मरुभूमि टक यानी दक्षिणी पश्चिमी पंजाब और भादानक प्रदेश की भाषा कहा है। इस प्राकृत भाषा में गुढ़ाड्य की बड्ड कहा मिलती है। इस भाषा में संयुक्त व्यंजनों का सस्वर कर देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे स्नान का स्नान, भार्या का भार्या, ल के स्थान पर ल मिलता है, श श के स्थान पर कहीं श और कहीं स मिलता है और ळ के स्थान पर न हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय प्राकृत काल में आकर संस्कृत के साथ साथ प्राकृतों का अधिक प्रचार हुआ। नाटकों में निम्न कोटि के पात्र प्राकृत भाषाएं बोलते थे और इन प्राकृत भाषाओं में स्वतंत्र ग्रंथ भी रचे गए थे, जिनमें से जैन धर्म के ग्रंथ अधिक मात्रा में मिलते हैं। ग, तृतीय प्राकृत काल। यह काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, इसे अवरंश काल कहते हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, इसे अवरंश काल कहते हैं, क्योंकि इसी काल में आकर अन्य भाषाओं के साथ साथ अवरंश का भी विकास हुआ है। अवरंश भाषाएं प्रायः प्राकृतकालीन बोलचाल की भाषाओं में विकसित हुई, अतः इन्हें प्राकृत भाषाओं में आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी कह सकते हैं। अवरंश तत्कालीन बोलचाल की भाषा है जिसके अनेक रूप मिलते हैं। मार्कंडेय ने प्रथम तो अवरंश के तीन भेद किए हैं, नागर, ब्राह्मण और उपनागर, परंतु आगे चलकर अवरंश की बोलियों के 27 भेद स्वीकार किए गए हैं। ब्राह्मण, लाट, वैदर्भ, उपनागर, नागर, बर्बर, आमंत्य, मागध, पांचाल, टाक, मालव, कैकेय, गौड, औड़, वैवपाश्चात, पांडे, कौंतल, शैंगल, कालिंग, प्राच्य, कांड़ाट, कांच, द्रामिड, गौरजर, आभीर, मध्यदेशी और पैताल। इन नामों से स्पष्ट है कि प्रत्येक देश की बोली का नाम उस प्रदेश के आधार पर रख लिया गया है। उस समय तक ये बोलियां साहित्य रचना में प्रयुक्त नहीं होती थी। धीरे धीरे इन बोलियों को भी साहित्य रचना में स्थान मिलने लगा और हेमचंद के समय तक अवरंश ने भी पूर्ण परिनिष्ठित रूप ग्रहण कर लिया। उस प्रकार हेमचंद ने हेम शब्दानुशासन भाषाओं को वर्गीकरण करते हुए अपभ्रंश को भी स्थान दिया है। अवरंश की बोलियों के वर्गीकरण के बारे में सभी विद्वान एकमत नहीं है। आधुनिक विद्वानों में से डॉक्टर याकोनी ने सनत कुमार चर्यू की भूमिका में अवरंश के चार भेद स्वीकार किए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर तगारा ने अवरंश का व्याकरण लिखते समय उसके केवल तीन भेद ही स्वीकार किए हैं, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। आपने उत्तरी अवरंश नामक भेद को स्वीकार नहीं किया है। इसके उपरांत डॉक्टर नामोर सिंह ने दक्षिणी भेद को व्यर्थ ठहराकर अवरंश के केवल दो ही भेद किए हैं, पश्चिमी और पूर्वी। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कौशिक ने भारतीय भाषाओं आर्य भाषाओं के इतिहास नामक ग्रंथ में उक्त सभी अभ्रंशों पर गहराई के साथ विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि उस समय जो लेखक अभ्रंश भाषा में कुछ लिख रहे थे, वे चाहे पूर्व के निवासी हो या पश्चिम के, चाहे उत्तर के निवासी हो या दक्षिण के, उन सबके ग्रंथों में एक ही परिनिष्ठित अभ्रंश भाषा का प्रयोग मिलता है। अतएव साहित्य के लिए भले ही एक परिनिश्चित अभ्रंश भाषा का प्रयोग होता था, परंतु बोलचाल में उस समय भी कई अभ्रंश भाषाएं प्रचलित थी, जिनमें से अधिकांश आर्य भाषाओं का विकास हुआ। विद्वानों का विचार है कि उस समय कम से कम 7 अभ्रंश भाषाएं अवश्य प्रचलित थीं, जो स्वरश्रेणी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्र, अर्धमागधी और मागधी कही जा सकती हैं, क्योंकि इनमें से ही आधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हुई हैं। जैसे अभ्रंश भाषाएं विकसित भाषाएं, पहला, स्वरश्रेणी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैशाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी, खस से पहाड़ी भाषाएं, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। उक्त अपभ्रंश भाषाओं में से सौर श्रेणी अपभ्रंश के नागर रूप से राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा में वे सभी ध्वनियाँ विद्यमान थी जो प्रकृति में व्यवहित होती थी। इनमें से ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ और ड ढ भी थे, परंतु इनके लिए लिपि चिन्ह न थे। श, स के स्थान पर केवल स का ही प्रयोग होता है। अपभ्रंश का एक उकार बहुल भाषा थी। इसमें री को छोड़कर सभी स्वरों के अनुनासिक रूपों का प्रयोग प्रचलित था। इसमें प्रत्येक शब्द के अंतिम स्वर के ह्रस्व होने की प्रवृत्ति अधिक बड़ी चढ़ी थी। यहाँ आते जाते धातु के नाम और दोनों के रूप अत्यंत कम हो गए थे, इसीलिए यह भाषा बहुत सरल हो गई थी। यह भाषा व्योगात्मक की ओर बढ़ने लगी थी और यहाँ आते आते नपुंसक लिंग समाप्त हो गया था। इसमें कारकों के रूप भी कम हो गए थे और वचन के भी दो रह गए थे। यहाँ तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज शब्दों की बहुलता हो गई थी और कतिपय विदेशी शब्द भी प्रयुक्त होने लगे थे। इस प्रकार अपभ्रंश भाषाएं ईसा की 10वीं शताब्दी तक अच्छी तरह विकसित होकर साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगी थी। अतएव इन्हें मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था कह सकते हैं। इस तृतीय प्राकृत काल के अंतर्गत विकसित अपभ्रंश भाषाओं से ही आगे चलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, परंतु इनके मध्य में एक और भाषा मिलती है जिसमें संदेश रासक, प्राकृत प्रांगलम, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, कीर्तिलता, ज्ञानेश्वर आदि ग्रंथों का निर्माण हुआ है और जिसे कुछ विद्वान परवर्ती अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, देशी भाषा आदि कई नामों से अभिहित करते हैं और कुछ विद्वानों की यह राय है कि इस संक्रांति काल की भाषा को अवहट्ट कहना सर्वथा उपयुक्त है। इस अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान के संदेश रासक में मिलता है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। तदनंतर प्राकृत पैंगलम के टीका का लक्ष्मीधर ने भी इस ग्रंथ की भाषा को अवहट्ट कहा है। तत्पश्चात ज्योतिश्वर ठाकुर ने भी अपने वर्ण रत्नाकर की भाषा अवहट्ट बताई है। इसके उपरांत विद्यापति ने भी अपनी कीर्तिलता में देसिल बयान सबजन मिठा तम तयसन जापी अवहट्टा कहकर अवहट्ट भाषा की ओर संकेत किया है। इन सभी लेखकों के कथन पर विचार करने से ज्ञात होता है कि इन सभी ने अवहट्ट भाषा को स्वीकार किया है, परंतु यह अवहट्ट शब्द अपभ्रंश के लिए ही आया है, इससे भिन्न किसी भाषा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। अतएव जो विद्वान अवहट्ट भाषा को अपभ्रंश से भिन्न कोई अन्य भाषा विशेष स्वीकार करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि यह संक्रांति काल की अपभ्रंश भाषा ही उत्तरोत्तर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की ओर अग्रसर हो रही थी और इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का समावेश होता चला जा रहा था जिनका पूर्ण विकास आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में दृष्टिगोचर होता है। साथ ही यह अवहट्ट भाषा रूप रचना एवं प्रकृति की दृष्टि से अपभ्रंश के ही अधिक निकट थी, अतएव इसे स्वतंत्र भाषा मानकर अवहट्ट भाषा को अभ्रंश से पृथक स्वीकार करना किसी भी भांति न्यायोचित नहीं दिखाई देता। हाँ, इतना अवश्य है कि जो अभ्रंश भाषा साहित्यिक रूप ग्रहण करके ग्रंथ रचना के लिए अत्यधिक प्रयुक्त होने लगी थी उसी को अवहट्ट कहना तर्कसंगत एवं न्यायोचित है। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी के आसपास वर्तमान भारतीय आर्य भाषा का अस्तित्व बोलचाल में आने लगा था। वैसे भी ये भाषाएं बोलचाल के रूप में पहले विकसित हुई थी और इनका विकास अपभ्रंश भाषाओं से हुआ था। जैसे सौर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ, पश्चिमी पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी विकसित हुई, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ, खश अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाओं की उत्पत्ति हुई जबकि इस पर राजस्थानी का भी अत्यधिक प्रभाव है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ, अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, लहंदा, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। धीरे धीरे ईसा की 12वीं और 13वीं शताब्दी में इसका प्रयोग साहित्य रचना के लिए भी होने लगा था। इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्राय वही दुनिया विद्यमान है जो प्राकृत एवं अपभ्रंश में मिलती है, परंतु यहाँ आकर नए स्वरों का भी व्यवहार मिलता है। जैसे हिंदी में बोलियों के अंतर्गत 17-18 मूल स्वरों का प्रयोग होता है। यहाँ री का प्रयोग तत्सम शब्दों में मिलता है जबकि इसका उच्चारण उत्तरी भाषा में री और दक्षिणी भारत यानी मराठी प्रदेश में रू किया जाता है। व्यंजनों में से स, श और श तीनों ध्वनियाँ मिलती हैं जबकि उच्चारण में श और स का ही प्रयोग होता है। ढ पृथक पृथक लिखे जाते हैं। विदेशी प्रभाव से क, ख, ग, ज, फ आदि नवीन ध्वनियों का भी विकास हो गया है। अंतिम अस्वर प्राय लुप्त हो गया है। प्राकृत और अपभ्रंश के द्वित्व वाले शब्दों में से प्रथम वर्ण यहाँ दीर्घ हो गया है, जैसे कम से काम, अट्ठ से आठ। संस्कृत के कारकों के 24 रूप बनते थे, प्राकृत में 12 रूप रह गए हैं, अपभ्रंश में 6 रूप प्रचलित हैं, किंतु आधुनिक भारतीय भाषा में केवल दो रूप मूल और विकृति ही शेष रह गए हैं। क्रिया के रूपों में भी पर्याप्त कमी हो गई है। रचना की दृष्टि से ये भाषाएं पूर्णतया अभियोगात्मक हो गई हैं। नाम रूपों के लिए परसर्गों का प्रयोग होता है और धातु रूपों के लिए कृदंत और सहायक क्रियाओं के आधार पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है। संस्कृत में पहले तीन वचन थे किंतु अब यहाँ केवल दो वचन ही रह गए हैं और तीन लिंगों के स्थान पर यहाँ दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही शेष रह गए हैं। अब पहले की अपेक्षा शब्द भंडार की अत्यधिक वृद्धि हुई है क्योंकि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तुर्की अरबी फारसी पुर्तगाली अंग्रेजी डच आदि विदेशी भाषाओं के लगभग 8-10 हज़ार शब्द और आ गए हैं। इस प्रकार आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध एवं संपन्न हो गई हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंशों से विकसित हुई हैं और यह निर्विवाद सत्य है कि इनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है। इन भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव अवश्य है और इनके शब्द भंडार की पूरी संस्कृत के तत्सम शब्दों से पर्याप्त मात्रा में हुई है, परंतु ये सभी भाषाएं संस्कृत की पुत्री न होकर स्वतंत्र रूप से अपभ्रंश से निकली हैं तथा ये बोलचाल की भाषाओं में अधिक निकट हैं। इन भाषाओं का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया है। क्षेत्र में हार्नली, वेबर, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है, परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।